ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विजे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्तस्य कामादितरं कृपामयि त्वं शरणं वन्दे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतुः द्वैपायनो लोकाभ्याविभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि आप लोगों का बहुत बड़ा भारी सौभाग्य है जो जम्मू कश्मीर में आप लोग रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जम्मू द्वीप कहलाता है भारतवर्ष इसी स्थान के नाम पर। यहाँ पर प्राचीन काल में जामुन के बहुत से और विशाल विशाल पेड़ थे, इसलिए सारे देश का ही नाम जम्मू है। अथवा महा श्री रामचंद्र जी के परिकर जम्बुआन यही रहते थे उस गुफा में। ये कश्मीर भूमि पृथ्वी की स्वर्ग कहलाती है। इसमें शंकराचार्य जी से स्थान पर आए हैं। शंकराचार्य भी पहले आए थे। ठीक है, बासाइन ऋषि उनसे भी पहले आए थे और बड़े बड़े महानुभावों का जन्म इस देश में हुआ। भारत के और दूसरे भागों से यहाँ पर लोग रामानुज जैसे लोग और बहुत बड़े वैष्णवाचार्य लोग भी यहाँ पर आते रहे। यहीं पर भामती के टीका का वेदांत यहीं पर और भी बहुत से वृंदावन से भी कोई दूर नहीं है, निकट है। जैसे अमेरिका वालों के लिए इन लोगों के लिए सात समुद्र पार है वृंदावन। आप लोग तो रेल से भी जैसे तैसे जा सकते हैं वृंदावन। आज चढ़िए गाड़ी पर और कल सवेरे वहां पर उतर के वहां से संत लोग आते रहते हैं आसपास। इसलिए आप लोग अपना जन्म सफल करें, विशेष करके हमारे गीता में उपनिषदों में श्रीमद् भागवत में लिखा गया है सारे प्राणी मनुष्य के जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लताएं गुल्म देवता गंधर्व सभी सुख चाहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, कोई भी प्राणी। कभी कभी जब दुख से आदमी उब जाता है भाई हमारे तरफ में ये जोर से ये हवा ना क्योंकि साइड में नीचे रहे ऊपर
साइड में दे दिए, वो इधर हाँ तो
उग जाते हैं तो रेल के नीचे कट जाते हैं, क्योंकि दुख सहा नहीं जाता। कोई कोई आदमी बीज भी खा लेते हैं, किंतु इसलिए कि उसमें जायद शायद सुख है, इसमें अधिक दुख है। इसलिए कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, किंतु भगवान की ऐसी माया इस जगत में कोई भी सुखी नहीं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कीट हो, पतंग हो, वृक्ष हो, कोई भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं। आप लोगों की, हम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति भी सुखी हैं, वो संसार से डरे हुए डरपोक आदमियों में से पहले नंबर के हैं। उनको केवल शत्रु 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 ही दिख पड़ते हैं, जैसे कृष्ण, जैसे कंस को कृष्ण सर्वत्र दिख रहे थे, अब आया अब मारा अब मारा अब मारा, ऐसी उनकी स्थिति है। अतएव साधारण लोगों को क्या था, रावण जिनके नौकर चाकरों के घर सोने जवाहरात हीरे के बने हुए थे, और पत्नियां कितनी थी कोई गिनती नहीं, एक एक से सुंदरी जान से वो पा लेता था, हरण कर लेता था, सीता जी का भी हरण कर रहा है। मंदोदरी बहुत सुंदरी, बहुत धार्मिक भी थी, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती उसके थे, किंतु उसके वंश में दियाबाती जलाने वाला भी कोई नहीं रहा। हिरण्यकश्यप जैसा व्यक्ति जो दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे, आकाश में नहीं मिले, पृथ्वी पर न मरे, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरे, किसी भी ब्रह्मा के रचना के किसी भी प्राणी से न मर सके, महीने में न मरे, और वो मर गए, एक क्षण भी नहीं लगा। इसलिए हमारे साइंटिस्ट लोग, हमारे बड़े बड़े लोग चेष्टा कर रहे हैं कि हम लोग सुखी हों, आज ही से नहीं अनादि काल से। इस समय भी संयुक्त राष्ट्र या क्या बना है, उसमें भी ये विचार होता रहा था कि कैसे हम लोग सुखी रहें, दुख दूर हो, किंतु आतंकवाद जैसा, कश्मीर की दशा, और अब सब मानो मृत्यु सीट पर मर रहा है। नौजुवक बूढ़े होंगे, बूढ़े लोग मरेंगे, कोई नौजुवक स्थिति में ही मर जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अपने कर्मों के ऊपर में व्यवस्थापक प्रभु है। इसलिए जितने जितने वैज्ञानिक लोग उन्नत कर रहे हैं जीवों को सुखी करने के लिए, रसोई घर से लेकर मेडिकल डिपार्टमेंट तक आवागमन के मार्ग को, पहले पृथ्वी को चक्कर लगाने में कितने जन्म लग जाते, अब आदमी वहां पर बैठा या वहीं पर बैठ करके ही वो देख रहा है कि वो अमेरिका के ठीक दूसरी दिशा में कौन क्या बोल रहा है, पिक्चर के समेत आ जाए। ऐसी तेज से तेज हवाई जहाज बने हैं जो कि पृथ्वी को मामूली से घंटों में इधर से उधर चारों तरफ में भ्रमण कर, किंतु इससे क्या दुख दूर हुआ, दुख दूर हो। जितनी भी आजकल की सभ्यता बढ़ रही है, पढ़े लिखे हो रहे हैं, आज मैं संवाददाता कोई सम्मेलन था उसमें गया था, उसमें कह रहे थे कि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे इसलिए मूर्ख थे, अब हम शिक्षा प्राप्त कर। मैंने कहा कि जो कह रहा है वो मूर्ख है, उसको शिक्षा नहीं हुई, पहले सुखियां थी, हमने अपनी मैया को, माँ के पिताजी की माँ को देखा, पढ़े लिखे तो नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे वो, किंतु सुन करके साधु संतों का संग करके उनका चरित्र इतना निर्मल था, अक्षर तो नहीं पढ़ सकते थे किंतु कितने चरित्रवान थे, सच बोलते थे, उनके हृदय में प्रेम था। और आजकल के पढ़ी लिखी जितनी स्त्रियां हैं स्कूलों कॉलेजों में जाकर के वहीं पर बस लड़के उत्पन्न हो जाते हैं, और डाइवोर्स वहीं से सीख लेते हैं। पहले तो हमने डाइवोर्स की बात आज से 60-70 वर्ष पहले हमने नहीं सुनी, जितना ही ये पाश्चात्य देश की शिक्षा आएगी उतने ही ये लोग भ्रष्ट होंगे, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। पहले सुन करके वेद आदमी सुनता था, सबका कल्याण जाता था, आजकल सुनते हैं नहीं और सब अक्षर पढ़ते हैं, पाश्चात्य शिक्षाएं और जीवन चरित्र बिगड़ जाता है। अभी देखो मेडिकल साइंस ने इतना उन्नति किया कि बंदर के खोपड़ी को यहां लगा दे, यहां पर हार्ट खराब हो गया तो दूसरे का हार्ट लेकर के लगा दे, आपकी आंख खराब हो गई है तो एक आदमी मर रहा है उसकी आंख लेकर के यहां पर लगा देंगे, बस दृष्टि आ गई। इसी तरह से आवागमन की बात मैंने कही, और सब रसोई घर से लेकर के सब डिपार्टमेंट में उन्नति हुई, किंतु आत्मा की भूख मर गई, आत्मा के गुण सब नष्ट हो। आजकल औरतों की आवाज जिसको हम इलेक्शन में जिताते हैं वो कौन होते हैं, अधिकांश रूप में डकैत, खूनी, लोभी, लालची, ऐसे लोगों से आप क्या आशा कर सकते हैं सुख की और शांति की। विदेशों में जानते हैं जाता हूं तो सुनता हूं, भारतवर्ष जैसा भ्रष्ट और घुसखोर कोई देश नहीं तो भारतवर्ष की कितनी उन्नति होगी, उन्नति होती, किंतु इन घुसखोरों के मारे कचहरी की, स्कूल की, सबकी इनके इनके घूस मांगे, बिना घूस लिए कोई काम ही नहीं कर सकते, यहां तक कि गवर्नर, यहां तक कि राष्ट्रपति, यहां तक कि प्रधान मुख्यमंत्री, उनका चरित्र भी बढ़ गया। तो ऐसे में आप सुख की भावना कैसे कर सकते, ये आज की समस्या ही नहीं है, प्राचीन काल से ये समस्याएं हैं। क्यों? अब इस पर हम लोग विचार करें, हम लोग वास्तव में यह शरीर नहीं, ये तो कपड़े जैसे वस्त्र जैसे है, और विशेष कहें हाड़ मांस रक्त पैखाना और पेशाब की एक थैली है, भगवान ने इसे बहुत संवार करके रखता है, सुंदर से चेहरे इत्यादि सब बना करके बड़ा सुखड़ बना रखा, किंतु साथ ही साथ में ये जेल खाना है उनका, माया का यहां राज्य है, किसी को सुखी नहीं रहते। क्यों? हम लोग भगवान को भूल करके कुछ अपराध किया, इस अपराध से वो माया ने जेल खाने में बंद कर रखा है, और इसमें हथकड़ी बेड़ी लगा दी, क्या आसक्ति, ऐसे तो सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, किंतु माया ने धन में, प्रतिष्ठा में, स्त्री पुत्र पति में एक ऐसी आसक्ति लगा दी, अब टस से मस नहीं हो सकते। वो तो बड़े सौभाग्यवान लोग ये समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, इसे हमारा संबंध नहीं है, हम प्रभु के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाश चेतन अमल सहज सुखर, हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं जो विश्व का सृजन करता है, संहार एक सेकंड में कर सकता है, बड़ा दयालु भी, उसी के व्यवस्थानुसार में सब कुछ होता है, सब कुछ व्यवस्था रखता है, घट घट की बात को जानता है। इसलिए ये जेल खाना हम उसे भूल गए, जैसे कोई एक लड़का अपने दयालु माता पिता को भूलकर आजकल घर से भाग निकलते हैं और बाहर में जूता खाते हैं, चाय के प्यालियों को मांजते हैं, किंतु माता पिता के यहां नहीं आते, ऐसे भी दुर्भाग्य हम लोग वैसे में से एक भगवान के यहां बड़े सुख से रह सकते थे, किंतु उनको भूल जाने से हम इस संसार में आसक्त हो गए और आसक्ति के कारण ही जितने दुख हैं। मान लिया कि एक लड़की है, उसको कोई मारता है, काश्मीर में कितने लोग मरते हैं, तो सबको दुख नहीं होता। जिसका जो रिलेटिव है वो मरता है तब उसको बड़ा दुख होता है। ऐसे ही हम जिसको अपना मानते हैं इस शरीर को, इसलिए उसमें आसक्त हैं। तुमको नहीं मारा, तुम्हारी स्त्री को किसी ने चपत मारी, तुमको तो लगा नहीं चोट, किंतु जिसको मारा है उसे भी अधिक चोट लगती है। क्यों? आसक्ति से। जिस दिन संसार से सारी आसक्ति हट जाएगी, सुखदेव गोस्वामी नारद जी जैसे हो जाएगी, तो जगत में रहते हुए कोई भी दुख नहीं आएगा, कोई भी दुख नहीं आएगा। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने यह सुझाव दिया, शास्त्रों में अपने अनुभूतियों को लिखा, कैसे ये जीव सुखी हो सकता, कैसे सुखी हो सकता। बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका। वो क्या है? यदि कोई अनुभवी संत मिल गया जो कि संसार से विरक्त है, जिसको संसार का वैभव रुपया पैसा नहीं चाहिए, संसारी किसी भी वस्तुओं में आसक्ति नहीं है, आसक्ति केवल भगवान के चरणों में है, हमारे समस्त प्रश्नों को मीमांसा कर सकता है, उत्तर दे करके समझा सकता है। अनुभव संपन्न व्यक्ति यदि हो तो उसका संग करने से, उसकी बातों को सुनने से हमारा कल्याण हो सकता, अन्यथा कोई भी उपाय नहीं है। जिस दिन कोई ऐसा संत मिल जाए, समझो जी आज हमारे दुख के दिन दूर हो गए, अब हमारा कल्याण हो गया। भगवान के मिलने से नहीं होगा, किंतु उनके जो संत हैं, जो इस मेथड को, प्रोसेस को जानते हैं, वो बतलाएं। इसलिए भगवान की कृपा से भी अधिक भक्तों की कृपा है। भगवान के भक्त लोग जानते हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जाती है, भगवान उतना नहीं बतला, उनको प्रोसेस उतना मालूम नहीं है, वो तो भोक्ता उसके। इसलिए संसार में भगवान का मिलना भी सहज है, किंतु ऐसे संत जैसे नारद जी हैं, व्यास देव जी हैं, सुखदेव गोस्वामी जी हैं, चैतन्य महाप्रभु के परिकर लोग हैं, इन्हों का मिलना बड़ा कठिन है। जब मिल जाए समझ जाओ हमारा परम सुख। तो वो बतलाते हैं क्या, देखो भगवान बड़े दयालु, उनका शरीर है, उनके अंदर में विश्व के जितने भी सुंदर से सुंदर गुण हैं उनमें है, बड़े सुंदर हैं, बड़े मधुर हैं, लोगों को चित्त को दर्शन देकर के आकर्षण करते हैं। ब्रज के मोर, ब्रज के बंदर, ब्रज के गोप गोपियां कृष्ण को रूप को देख करके कैसे आकर्षित होती थी, अपना देह के शुद्ध बुद्धि सब कुछ भूल गए। यह है भगवान, भगवान को मूछे नहीं आती, उनको दाढ़ी नहीं होती, इतनी किशोर उम्र रहती है उनकी। आजकल का तो बहुत भगवान है, बहुत हमने बहुत भगवानों को देखा, कैंसर से, टीबी से मरते हुए देखा और परस्पर लड़ते हुए देखा। यहाँ की बीवी पसंद नहीं है तो अमेरिका में वो भगवान एक दिल्ली के गए और वहां से शादी करके एक विदेशी को लिया, और इधर अपने घर वाली स्त्री विष खाकर तुम मर गए। इसलिए ऐसे भगवानों पर विश्वास मत करो। मैं ब्रह्म हूं ये भी कहने वाले हैं, हम ब्रह्मास्मि, मत पकड़ो विश्वास, ऐसे विशेष करके भारतवर्ष में आजकल ऐसे संत भी हैं जो कहते हैं कि ओ मैं ही ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो, तो इतना रूप सुख से क्यों विफल हो। इसलिए हमारे संतों ने यह आविष्कार किया कि ऐसे गुरु के समीप में जाओ, एक्सपर्ट के पास में जाओ, संसार से परम विरक्त हो, भगवान के चरणों में उसकी अत्यंत अनुरक्ति हो, समस्त शास्त्रों का विचार करने वाला, अनुभव करने वाला, सारी शंकाओं को दूर करने वाला हो। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वागवच्छे समत्पाणि सोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि। गीता में भी ऐसे बदला सब वो लोग बतलाते हैं कि भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ, जिस कारण से हमको ये दुख हुआ भगवान को हम भूल गए, उसी प्रकार से जिसमें भगवान का हम स्मरण करने लगेंगे और उसकी याद आ जाएगी, बस उसी दिन सारे दुख दूर। ये भक्ति क्या है? भक्ति बहुत से लोग क्या करते हैं, शंकर जी के मंदिर में गए, महिलाएं भी ऐसे पुरुष भी लोग, किस कोई दुख से बड़े दुखी हैं और जाकर के शिव जी का चौकठा मंदिर का दबाते हैं और कहते हैं कि हम पांच आने का बताशा आपको चढ़ाएंगे, हमारी लड़की की शादी हो जाए, हमारा लड़का पास हो जाए, हमारा यह रोग दूर हो जाए। तो ये भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति को आप लोग समझिए, जिस दिन भक्ति को समझ करके बुझ करके करेंगे करेंगी, उस दिन तो भगवान आपके पीछे पीछे डोलेंगे। इसलिए भक्ति किसे कहते हैं, समस्त शास्त्रों का सार तात्पर्य लेकर जो उपनिषदों में, भागवत में और जगहों में बतलाया गया है, हमारे चैतन्य महाप्रभु के परिकर एक रूप गोस्वामी ने इसकी परिभाषा है। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण सुलिनम भक्ति उत्तमा। क्या तात्पर्य? भगवान की भी मैंने कहो ये भगवत्ता की सार ये कृष्ण है। गोपियों के घरों में मक्खन चुराता है, गईये बछड़े चराता है, बांसुरी बजाता है, मोर पंख यहां धारण करता है, ऐसे मालूम होता है जब बचपन में वो करवट नहीं फिर सकता, जसोदा मैया करवट फिरा, और जसोदा मैया के डर से रोता है, जसोदा मैया उसको बांध देती है उखल में, किंतु है कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जो जगत के सृष्टा हैं, उन ईश्वरों के भी ईश्वरों के ईश्वर का भी परमेश्वर वो कृष्ण है। इस चीज को समझेंगे, कृष्ण से ही राम, कृष्ण से ही नृसिंह, कृष्ण से ही नारायण, कृष्ण से ही सब तत्वों का प्रकाश है। तो ऐसा कृष्ण ही एकमात्र राश कर सकता है, नारायण राम नृसिंह क्या राश करेंगे? गोपियों के घर में मक्खन चुराएंगे ये लोग नहीं, नारायण का तो जन्म ही नहीं है, उनका कोई माता पिता नहीं। कृष्ण ऐसी मधुर लीलाओं को जगत में प्रकट होकर करते हैं, किस लिए? इसलिए करते हैं कि हमारे जाने के बाद भी यदि कोई इन लीलाओं का स्मरण करे, बस संसार से मुक्ति हो जाएगी और उनके चरणों में ब्रज जैसा प्रेम हो जाएगा। लीला कथाएं बड़ी उनकी गंभीर और बड़ी शक्तिशाली है, जो भगवान में नहीं है खुद उन सब लीला कथाओं में और उनके नाम में। इसलिए कहते हैं कृष्णानुशीलनम भक्ति रूप, अपने तन से मन से वचन से अपनी भावनाओं से नैरंतर्जमयी तैलधारावत अभिछिन्न गति से कृष्ण की सेवा का नाम भक्ति है। फिर से समझो, फिर से अच्छी तरह से, अपने तन मन और वचन, और वचन से भी अधिक मन की जो भावनाएं हैं और उससे भी ऊपर आत्मा की जो भावनाएं हैं प्रेम इत्यादि, नैरंतर्जमयी तैलधारावत अविच्छिन्न गति से दिन रात तार में बंधने वाली जो भगवान की निरंतर सेवा है उसका नाम है भक्ति। किंतु इसमें भी ये शुद्ध भक्ति नहीं हुई। शुद्ध भक्ति कब होगी? उस भक्ति के बदले, उस सेवा के बदले कृष्ण से कुछ मत चाहो, लौकिक और पारलौकिक, वो तो खुद जानने वाला है। हाँ, एक चीज मांग सकते, क्या? हे प्रभु, आपके चरणों में हमारी भक्ति हो, आप अपने चरणों की सेवा दीजिए, ये जागतिक इच्छा नहीं। किंतु इसके अतिरिक्त मैं सुखी हूं, हमारे परिवार के लोग सुखी हों, संसार के लोग ऐसे हों, जहां आया बस कोई भी अभिलाषा संसार, वो भक्ति उत्तमा नहीं रह करके भक्ति तो होगी किंतु वो थोड़ी सी नीची हो जाएगी, कुछ दूषित हो जाएगी। और ज्ञान, कर्म, योग, तपस्या इत्यादि जो है इसके अधीन भक्ति न हो, इसके द्वारा आच्छादित न रहे, तब माता पिता की सेवा से, देश की सेवा नहीं करने से भक्ति नहीं हो, अथवा दान पुण्य बिना किए हुए भक्ति नहीं होगी, यह धारणा दूर रहे। भक्ति स्वतंत्र है, किसी भी ज्ञान योग इत्यादि के अधीन नहीं है। विशेष करके समझो ये ज्ञान क्या है, मैं पानी पीने से प्यास दूर हो जाती है, बात ठीक है ना? हम सुनते हैं जब पानी पीने से प्यास दूर हो जाती है, रोटी चावल गेहूं के बने हुए पदार्थों से खाने से भूख दूर हो जाती है, किंतु खाओ मत पियो मत भूख चली जाएगी, यह है ज्ञान। ज्ञान में अनुभूति नहीं है, जब खाएंगे तो चाहे जाने और न जाने, बालक तो नहीं जानता जब पानी पीने से प्यास, उसको पानी पिला दो, दूध पिला दो, भूख मिट जाती है प्यास। ये अनुभूति युक्त खाना पीना जैसे है, ऐसे भगवान की सेवा की अनुभूति, इसी का नाम भक्ति। ज्ञान और कर्म, अच्छा से अच्छा कर्म ही भव बंधन में बांधने वाला। माता पिता की सेवा अच्छी चीज है, देश की सेवा भी अच्छी है, देश के लिए मर जाना भी अच्छा है, किंतु इसका फल जो स्वर्ग है, ये सुख की सोने की बेड़ी है, और बुरे कर्मों का जो फल है ये लोहे की बेड़ी है। सोने वाली बेड़ी अच्छा है या लोहे वाली बेड़ी अच्छी है? कौन सी बेड़ी अच्छी है, सोने की? दोनों बेड़ियां ही खराब है, इसलिए अच्छा कर्म बुरा कर्म मत करो, भगवान के लिए करो। बाजार में जाओ तो देखो जी अच्छी अच्छी ये सब्जियां, अच्छे अच्छे फल हैं, अच्छे ये हैं, ये भगवान को दिया है, उनका प्रसाद लो, उसमें दोष नहीं है। किंतु अपने लिए बाजार मत करो, संतति अपने लिए पैदा मत करो, नहीं तो वह तुम्हें दुख देगा। भगवान की सेवा के लिए सब कुछ, भगवान की सेवा के लिए खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, भगवान के लिए, बस सज ही भक्ति हो जाएगी। किंतु जहां ये समझा कि अच्छे कर्मों से भक्ति होगी, दान पुण्य से होगी, वो भक्ति नहीं होगी, वो घटिया किस्म की भक्ति हो जाएगी। इसलिए यहां पर उत्तम भक्ति कहा गया, इसका मतलब है एक भक्ति है जो उत्तम नहीं है, जैसे पानी, पानीय जल, स्टेशनों पर इधर उधर लिख देते हैं पानीय जल, क्यों लिखते हैं? नाली का पानी भी तो पानी है, गटर से पानी निकलता है वो भी तो पानी है, गंदे नाले का पानी वो भी पानी है, नहरों का पानी भी पानी है, नदियों का जल भी पानी है, समुद्र का जल भी पानी है, पी सकते हैं, पानी तो सभी है। उसी प्रकार से भक्ति कहने से, उत्तमा भक्ति कहने से समझो जो कुछ ऐसी भी भक्ति है जैसे शंकर जी की भक्ति, गणेश जी की भक्ति, दुर्गा जी की भक्ति, ये अपव्यवहार है। भक्ति भगवान की होगी, गणेश जी भगवान नहीं, शंकर जी नहीं है, ये लोग भगवान की विभूतियां हैं, उनकी शक्तियां हैं, गुरु के रूप में उनको गुरु मानो, उनकी अवज्ञा भी मत करो, गुरु के रूप हनुमान जी को गुरु के रूप में देखो, भगवान के रूप में मत देखो। हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया हुआ भगवान राम को भोग दे सकते हैं कि नहीं? दे सकती हैं ना आप लोग? मूर्ख जो होंगी वो ऐसा करेंगे। भगवान यदि होते हनुमान जी तो उसका भोग राम को, कृष्ण को, सबको दिया जाता, किंतु भगवान कृष्ण ग्वाले होने पर भी जगत के ब्राह्मण से ब्रह्मा तक शंकर तक सभी उनका प्रसाद लेते हैं, इसलिए कृष्ण स्वयं भगवान। इस चीज को एक कृष्ण की पूजा करने से, एक उनका भजन करने से सब कुछ जीवन का हो गया और कुछ नहीं, तस्मिन तुष्टे जगत। इस चीज को याद रख करके यदि कृष्ण नाम किया गोविंद अथवा राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद गोपाल, बस आपका भजन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, कुछ बाकी नहीं रहा। हरे से यहां राधिका जो कृष्ण के चित्त को भी हरण करने वाली राधिका जी है वो पहला हरे है और कृष्ण है, और उसके बाद में हरे राम में वो दशरथी राम को मत समझिए, यहाँ आराध्य देवते एक होता है, यहाँ पर राम माने राधा रमण, राधा रमण जो कृष्ण है उनको यहाँ पर आप इष्ट देवी। इस तरह से सहज रूप में भगवान का भजन करने से, जान करके समझ करके तत्व से बड़े विश्वास के साथ सहज भक्ति, इसके द्वारा हमारा करेगा एक कीर्तन करेगा, थोड़ा सा कीर्तन कर लो। बहुत धीरे धीरे धीरे
कृष्ण नाम के धीरे मोती।
Thank you.
Thank you.
जिसको हम जानते नहीं है, कभी देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए सबसे भगवान की भक्ति में सबसे पहले गुरु जी का शरण का आश्रय करना ये प्रधान करता है। श्रीमद् भागवत प्रारंभ करने में ही ये बतलाया व्यास जी स्वयं नारायण है। देखो इतने शास्त्र लिखना अनुभव करके जिसको एक लाइन को समझना बड़ा बड़ी कठिन और उस पर आचरण करने से सहजी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ये भगवान नारायण है व्यास जी। नहीं तो जितना उन्होंने शास्त्र लिखा, वेद उपनिषदों का विभाग किया, महाभारत रामायण की रचना की, 54 पुराणों की रचना की और न जाने क्या क्या सब किया, वो मोहग्रस्त हो गए, निर्णय नहीं कर पाए कि हमारा चित्त क्यों खिन्न है, क्यों प्रसन्न नहीं हुआ। बहुत चेष्टा की जानने के लिए हमारे मन के अंदर में ग्लानि क्यों है। मैंने तो सब कुछ किया, सभी लोग हमको गुरु मानते हैं, धर्म का प्रवर्तक मानते हैं, किंतु मेरा मन खिन्न है। इसलिए गंगा के तट पर बद्री नारायण में वो कुछ ही काका, इतने में नारद ऋषि उनके गुरु आए। ये नारद जी देखने में ऐसे ही कैसे हैं, लोग समझते हैं कि झगड़ा लगा देने वाले हैं, किंतु ऐसा मत समझिए। भगवान के प्रिय पात्रों में से एक, भगवान के तत्व को जानने वाले हैं, भक्ति को जानने वाले हैं। आते ही सीधा प्रश्न किया, अजय व्यासदेव आपने तो सारे शस्त्रों को निर्माण किया, धर्मों की प्रतिष्ठा की, गीता जैसे रत्न, श्रीमद् भागवत जैसे रत्न इत्यादि आपने संक्षेप में किया, किंतु आपका मन देखते हैं कि खिन्न क्यों है, दुखी क्यों। तो यही तो बात है गुरुदेव, रोगी नहीं जानता कि कौन सा मुझे रोग है, ये वैद्य निर्णय करता है। तो आप भवरोग के वैद्य हैं, मैं तो इस समय रोगी हूं, मैं नहीं जानता कि हमारा मन क्यों नहीं प्रसन्न हो रहा है। आप लोग भी नहीं जानते हैं कि हमारा मन क्यों खुन्न है, दुखी क्यों है। अभी जुआ की शोध में थे, अब बुढ़ापा आ जाएगा, आ रहा है दौड़ करके, बाल हमारे कच्चे और पक्के मिल करके अब आ रहे हैं, दांत दृष्टि भी कुछ कमजोर होती चली जा रही है, परवाह नहीं है, ऐसे मस्त होकर के संसार विषय में पड़ेंगे। ऐसे प्यार की तो सबके ज्ञाता हैं, अरे तुम तो ज्ञाता हो, तुम्हारा मन खिन्न क्यों है, मैं नहीं जानता गुरुदेव आप बतलाइए। उन्होंने कहा कि तुमने इन शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें तो लिखी, किंतु भगवान के भक्ति के विषय में कुछ नहीं लिखा, यहां तक तुमने ये निर्णय नहीं किया कि कृष्ण ही भगवान है या भगवान कौन है, गणेश भगवान, हनुमान भगवान, दुर्गा देवी भगवान, महामाया और कितने भगवानों का आपने नाम लिया और उनकी पूजा का विधान किया। अभी दक्षिण देश में जाएंगे ना, कभी कल परसों जो बीता है वो गणेश चतुर्थी या क्या, और करोड़ों रुपया खर्च करके उनकी मूर्ति बना करके और फिर समुद्र में विसर्जन कर, जिसकी पूजा की उसको ही विसर्जन करना, जिसको आह्वान किया बुलाया। और जाएंगे उधर में तो कन्याकुमारी और तांजोर में सब शिवलिंग 1008 है, उधर में ऐसे ही पूजा प्रचलन है। इससे सुखी हो सकते हैं कि नहीं, आपने ये सब लिखा सबकी पूजा करो, किंतु किसकी पूजा श्रेष्ठ है आपने नहीं बताया, कि आपने बतलाया है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये आपने लिखा है जो सोदा मैया उस परब्रह्म को सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले के भी ब्रह्म के भी ब्रह्म हैं, उनको जो सोदा मैया ने बांध दिया वो रो करके पीर बिलाने लगा गीता, तो नहीं तो वो गोपियों के पहिया पड़ते हैं ये लिखा, राधा जी के चरण पलोड़ते हैं ये दिखा, ये तो नहीं लिखा। आपने लिखा ये कृष्ण कहते हैं कि मैं न पारे हम निर्वत दशन जुजा, मैं करोड़ों जन्म लेकर के गए गोपियों आपका ऋण नहीं चुका सकता। क्यों? आपने लिखा यदि श्रीमद भागवत के गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, इन सबको निकाल दिया जाए तो भागवत कुछ नहीं बचे। आपने लिखा ये सब तो आप इनको लिखिए और वैसे भी विश्वास कीजिए और उनका भजन कीजिए, उस कृष्ण का, वो भी राधा जी के साथ में, राधा जी का भजन अधिक, राधा जी के कृपा से ही कृष्ण की कृपा मिल सकती है, कृष्ण की कृपा से कृष्ण नहीं मिलेंगे। अजय ये तो मैं जानता हूं कैसे लिखे हैं, उन्होंने कहा कि भक्ति जो अपने गुरु जी की सेवा करो, उनकी बात मानो, मान करके वैसा ही आचरण करो। भक्ति माने अनकंडीशनल सरेंडर, उस प्रभु के चरणों में बिना शर्त उनके चरणों में आत्मसमर्पण, यह भक्ति का पहला लक्षण है। जो आत्मसमर्पण नहीं किया वो भक्ति कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए अर्जुन ने पहले उनसे कहा कि मैं जो जानता हूं नहीं जानता हूं सब आपके चरणों में न्योछावर कर दिया, आप गुरु हैं, आप हमें शिक्षा दें, शिष्यस्ते मैं आपका शिष्य हूं। तब भगवान ने उसको शिक्षा दी और यदि कहता कि मैं तो सब जानता हूं तो कृष्ण देते, ऐसे ही तुम निर्बोध बालक बनो, अपने ज्ञान को सब हटा दो और गुरु के चरण में जाओ, अनकंडीशनली सरेंडर। तो व्यास जी ने जब ही ऐसा किया उन्होंने समाधि उनकी लग गई और समाधि में उन्होंने कृष्ण के बाल से देखा और जितनी भी उनकी लीलाएं सबको उन्होंने समाधि में देखा। जस्या वही सूर्य प्राणायाम कृष्ण परम पुरुष भक्ति शोक मोह, भगवान को परिपूर्ण रूप में देखा। क्या देखा? नंद बाबा, जसोदा, गोपियों को, गोपों को, ब्रज के जितने भी चीजें हैं उनको सबको देखा और गोपियों का कृष्ण के प्रति जैसी सेवा की भावना है उसको भी देखा और देखा जो उनके विमुख में ही माया है, जो लोग जीव को भगवान को बोलते हैं उनको पकड़ करके भी संसार कारागार में डाल दे, उनके ज्ञान को भी लुप्त कर दे, ये माया है जिसके वशीभूत हम लोग इस माया के तेल में पड़कर 84 लाख जन्मों में हमारा जन्म हुआ, कूकर सुकर गधे बंदर भेड़ बकरी सब कितने जन्म हुए, देवता ब्रह्मा भी बने, कहीं सुख नहीं मिला। इसलिए मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है और मुक्ति का और भक्ति का इसको द्वार माना गया। मनुष्य जन्म लेकर के जिसने अपने जीवन को सवार लिया भगवान की भक्ति में, फिर 84 लाख जन्मों में भाई भ्रमण करेंगे, वो आपकी विद्या बुद्धि पद और राजनीतिक कद मुख्यमंत्रीत्व और प्रधानमंत्रीत्व या और कोई मंत्रित्व भी या इंजीनियर साइंटिस्ट जो कुछ भी आपको बचा नहीं सकता, बिल बिलाते हुए मरना, उस पर अपना कंट्रोल नहीं है, प्रभु का ही है। इसलिए अभी से क्यों नहीं उनका भजन करो, भजन करो नाम संकीर्तन करो, जैसा चलते फिरते उठते बैठते रात में दिन में बिना खाए बिना स्नान किए हुए ये भगवान का कीर्तन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हारमोनियम जैसे तालपली कर सके, हाँ गर्दभ रागिनी है हमें गला मोटा है तो भी भगवान का नीच जाति बिल्ली के कुल में जन्म लेने पर मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन ईसाई सभी भगवान का स्नान किया नहीं किया इसका भी कोई चिंता नहीं, रात है कि दिन है इसका भी नहीं, टहल रहे हैं तभी बिना माला का भी कर सकते हैं माला से भी, कीर्तन उच्च स्वर से करते हैं, धीरे धीरे भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं, ध्यान अपने आप से। ऐसे सरल सहज तरीके, जैसे मुसलमान लोग तीन समय में नमाज पढ़ते हैं उठक बैठकर, कम से कम तो 50 बार दंड बैठक करते हैं, उसमें थक जाते हैं। आप लोग तो एक बार भी करने में थक जाएंगे, जिन मोटे हैं तो उनकी तो बात नहीं, और इसमें तो वो भी नहीं करना है, जहां जिस रूप में बैठो जैसे हो तैसे हो, यदि प्रणाम नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ कैसे, यदि ये भी नहीं कर सकते ऐसे तो ये भी करने की जरूरत नहीं। इतना सस्ता सहज धर्म और कौन हो सकता है, इसलिए सनातन धर्म सबसे सहज है। चोरी करना कठिन है किंतु भगवान का भजन करना सहज नहीं, सहज उससे भी सहज, ऐसा समझ करके आज से ही जो भगवान का नाम नहीं करते हैं वो भगवान का इस नाम को करेंगे, जिसको महामंत्र और कलयुग का प्रधान मंत्र बतलाया गया है, हरे कृष्णा
हरे राम हरे
मालूम होता है कि इसे आदमी कम है, उपस्थिति बहुत कम है, हम विदेशों में जाते हैं तो इसका 10 गुण आदमी आते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ कहाँ, अफ्रीका में, और यहाँ पर कश्मीरी ब्राह्मण लोग, उनकी संतान आप लोग हिंदू हो करके मुझे देख करके कष्ट होता है कि इतने ही केवल आदमी आते हैं इस जम्मू में, जिसकी संख्या 10-5 लाख हो। इसलिए कल से अपने भाई बंधुओं को, बहनों को, सखियों को, सहेलियों को सबको लेकर के आएंगे कि इसमें जगह ना हो तो बाहर में आकर के लोग खड़े होकर के बीच में गौ प्रणाम।